नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आज पेरिस शांति सम्मेलन एवं उसमें टर्की की भूमिका नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं युद्धकालीन संधियों से। युद्धकालीन संधियाँ युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही विशाल तुर्क साम्राज्य की कपाल क्रिया की भूमिका निर्मित हो चुकी थी। मित्र राष्ट्रों ने आरंभ में ही तुर्क साम्राज्य की अस्थियों को आपस में बांटने का निर्णय विभिन्न समझौता द्वारा कर लिया था। सर्वप्रथम 18 मार्च 1915 को कुस्तुनतुनिया समझौते कॉन्स्टेंटिनोपल एग्रीमेंट द्वारा रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने तुर्क साम्राज्य की अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था कर दी। इसके अनुसार रूस को कुस्तुनतुनिया, डार्डेनल्स, बास्फोरस का पश्चिमी तट, एशिया माइनर के तटवर्ती क्षेत्र एवं मारमोरा सागर पर अधिकार मिलना था। इसके साथ ही पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थानों की टर्की से मुक्ति एवं एक स्वतंत्र अरब राज्य की स्थापना का निश्चय किया गया और ईरान का तटस्थ क्षेत्र ब्रिटेन को देने का निश्चय किया गया। तत्पश्चात 26 अप्रैल 1915 को ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं इटली के बीच लंदन की संधि हुई, जिसके अनुसार इटली को लीबिया, डार्डेकानीज द्वीप समूह एवं भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में कतिपय हिस्से सुरक्षित कर दिए गए। इटली ने इसी मूल्य पर पाइकट समझौता, स्काई पाइकट एग्रीमेंट, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ, जिसमें रूस की भी स्वीकृति ली गई। इसके अनुसार तीनों ने तुर्क क्षेत्रों की प्राप्ति की योजनाएं बनाई। इससे रूस को तुर्क आर्मेनिया एवं तुर्किस्तान का एक अंग मिलना निश्चित हुआ। फ्रांस के लिए सीरिया का तट अदना एवं सिलिशिया नियत किया गया तथा ब्रिटेन के लिए दक्षिणी मेसोपोटामिया, बगदाद एवं एक्र और हैफा के बंदरगाह को छोड़ रखा गया। फलस्टाइन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की योजना बनाई गई। शेष क्षेत्रों को अरबों के लिए छोड़ दिया गया, परंतु उन्हें ब्रिटिश अथवा फ्रेंच प्रभाव के अधीन रखने का निश्चय किया गया। ये सभी समझौते गुप्त थे तथा युद्ध के पश्चात लागू होने वाले थे। इनके अतिरिक्त 17 अप्रैल 1917 को ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बीच संत जीन मैरियन समझौता, सेंट जीन मैरियन एग्रीमेंट हुआ, जिसके अनुसार इटली को दक्षिणी अनातोलिया में संरक्षण का अधिकार देना तय किया गया। अंतिम समझौता दिसंबर 1918 में क्लिमेंजो और लॉयड जॉर्ज के बीच हुआ तथा इसके अनुसार मोसुल का प्रदेश ब्रिटेन को मिलना तय हुआ। मित्र राष्ट्रों के आपसी समझौते एवं संधियों के साथ साथ इन्होंने अरबों एवं यहूदियों के साथ समझौते किए, जिसका उद्देश्य तुर्क साम्राज्य की से उन्हें मुक्ति दिलाना तथा स्वतंत्र करना था। शरीफ हुसैन एवं ब्रिटेन के साथ जनवरी 1917 में जो समझौता हुआ, उसके अनुसार अक्षांश 37 डिग्री से लेकर दक्षिण में अरब की खाड़ी तक तथा पूरब में फारस की खाड़ी से पश्चिम में लाल सागर तक का प्रदेश अरब राज्य में परिणत होने वाला था। इसमें सिर्फ सीरिया का तट शामिल नहीं था। इस प्रकार अरब साम्राज्य की कल्पना की गई। दूसरी ओर 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर घोषणा द्वारा यहूदियों को पैलेस्टाइन में राष्ट्रीय आवास स्थापित करने का वचन दिया गया। इन विभिन्न संधियों की गुप्तता के कारण उनमें अंतर विरोध भरा पड़ा था एवं सामंजस्य का अभाव था। साइकर पाइकट समझौता एवं बाल्फोर घोषणा और ब्रिटिश अरब समझौते के बीच विरोध की स्थिति स्पष्ट थी। 1917 में रूसी क्रांति के बाद साम्यवादियों ने युद्ध एवं युद्धकालीन समझौतों से मुख मोड़ लिया तथा गुप्त संधियों को प्रकाशित कर दिया। इससे अरबों को घोर निराशा हुई, परंतु युद्ध को जारी रखने के सिवा उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में इन बहुमुखी समस्याओं का विचार पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में हुआ और उसके पश्चात ही टर्की एवं अरब प्रायद्वीप का नया नक्शा प्रस्तुत हुआ। शांति सम्मेलन की व्यवस्था। शांति सम्मेलन का आरंभ 1919 ईस्वी में पेरिस में हुआ। इन दिनों विशाल ऑटोमन साम्राज्य भूसी साथ था तथा उसके विभिन्न अंग मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के कब्जे में थे। ईरान, सीरिया, मेसोपोटामिया, पैलेस्टाइन तथा टर्की के विशाल भाग में ब्रिटिश सेनाओं का आधिपत्य था। सिलीसिया एवं अदना में फ्रेंच सेनाओं ने प्रवेश किया था तथा अदालिया में इटली की सेनाएं थी। उधर दमिश्क में अमीर फैसल ने शासन व्यवस्था का भार भी संभाल लिया था। अतः शांति सम्मेलन के सम्मुख उस क्षेत्र के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेना था, परंतु इसमें आरंभ से ही बुनियादी दिक्कतें उठ खड़ी हुई। अमीर फैसल अरब स्वतंत्रता की मांग लेकर पेरिस पहुंचा तथा यहूदी नेता वेजमान पैलेस्टाइन में अरब साहे से पृथक यहूदी केंद्र की मांग लेकर आए थे। इन दोनों को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था। दूसरी तरफ फ्रांस, इटली एवं ग्रीस अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। फ्रांस सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों की मांग कर रहा था एवं साइकस पाइकट संधि की शर्तों के पालन पर नारे दे रहा था। ग्रीस प्रधानमंत्री बेलिजोलोस स्मिरना पर आंखें लगाए हुए था तथा इटली ने अदालिया में अपनी फौजें दी थी, परंतु अब स्वतंत्रता उनकी महत्वाकांक्षा में बाधक थी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रों 14 पॉइंट्स का जो आधार भावी विश्व शांति के लिए रखा था, वह भी साम्राज्यवादियों की लोलुपता के विरुद्ध था। प्रथम सूत्र के अनुसार गुप्त संधियों की मान्यता अवैध घोषित कर दी गई थी एवं 12वें सूत्र के अनुसार विभिन्न जातियों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय पर जोर दिया गया था। मित्र राष्ट्रों ने इन सूत्रों को मान लिया था, परंतु उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा इस राह में बाधक थी। अतः विल्सन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 19 मई 1919 ईस्वी को ग्रीक सेनाओं ने स्मिर्ना में प्रवेश किया तथा इसे ब्रिटिश एवं फ्रेंच समर्थन प्राप्त हुआ। अमीर फैसल ने भी ब्रिटिश दबाव में वेजमान से एक समझौता कर लिया एवं अरब स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शर्तों पर पैलेस्टाइन ने नए स्वरूप को अग्रिम स्वीकृति दे दी, परंतु अरबों में असंतोष बढ़ रहा था। विल्सन ने एक कमीशन की नियुक्ति द्वारा उनके मतों की जिज्ञासा की तो अरबों ने एक मत से स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रकट किया, परंतु फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य राष्ट्र अपनी लोलुपता को त्यागने में असमर्थ थे। अतः विल्सन के स्वदेश लौटने के पश्चात अप्रैल 24, 1920 ईस्वी को सैन रेमा सम्मेलन के द्वारा इन प्रदेशों में राष्ट्रसंघ के अधीन संरक्षित शासन की व्यवस्था मान ली गई। इनके अनुसार इन प्रदेशों की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पाश्चात्य देशों की निगरानी में प्रशासनिक प्रबंध एवं शिक्षण की व्यवस्था की गई। इस तरह उन पर नई जंजीरें जकड़ दी गई। सीरिया फ्रांस को सुपुर्द कर दिया गया एवं इराक और पैलेस्टाइन को ब्रिटेन के अधीन सौंप दिया गया। इस तरह अरबों का स्वप्न टूट गया। इन प्रदेशों में पुनः भयंकर विद्रोह हुआ, परंतु उनका क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया और 1920 ईस्वी के अंत तक इन प्रदेशों को लौह जंजीर में जकड़ दिया गया। शरीफ हुसैन के वंशजों के प्रति जो कृतज्ञता थी उसे चुकाने के हेतु मार्च 1921 ईस्वी में चर्चिल की अध्यक्षता में कैरो सम्मेलन हुआ। इसके अनुसार इराक का तख्त अमीर फैसल को तथा जॉर्डन नदी के पूर्वी क्षेत्र के नए राज्य ट्रांस जॉर्डन का तख्त अमीर अब्दुल्ला को सौंपने का निश्चय किया गया। 11 जुलाई 1921 ईस्वी को फैसल ने अपना नया पद संभाला। इसके शीघ्र ही बाद अब्दुल्ला भी ट्रांस जॉर्डन का नया अमीर नियुक्त हो गया। इस तरह इन प्रदेशों में मैंडेट के साथ साथ नए अमीरों को भी स्थान दिया गया। फर्स्ट मैंडेट, मैंडेट की व्यवस्था नवोदित राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इसके अनुसार पराजित राष्ट्रों के अधीनस्थ जो युद्ध क्षेत्र के पश्चात कृपया इसे फिर से सुन लेंगे। मैंडेट की व्यवस्था नवोदित राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इसके अनुसार पराजित राष्ट्रों के अधीनस्थ जो क्षेत्र युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हो गए थे परंतु शासन की राह में पीछे थे, उन्हें राष्ट्रों के संरक्षण में प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए सौंप देना था, जिसमें वे शासन का भार संभालने योग्य हों और आजाद हो सकें। शरीफ हुसैन हजाज में ही बना रहा, वास्तव में मरुभूमि क्षेत्र का नक्शा पूर्ववत ही बना रहा। इस प्रकार अरबों के असंतोष दबाने की चेष्टा की गई, परंतु वह अंदर ही अंदर सुलगती गई तथा विशाल अरब क्षेत्र एक अग्निकुंड बन गया। टर्की और सेब्र की संधि, 10 अगस्त 1920 ईस्वी। परास्त टर्की का भाग्य निर्णय सेब्र की संधि द्वारा हुआ। युद्धोपरांत सारे टर्की में मित्र राष्ट्र की सेनाएं भरी थी। राजधानी पर उनका संयुक्त कब्जा था तथा इनके विभिन्न क्षेत्रों पर पाश्चात्य राष्ट्रों ने अपना दावा पेश कर दिया था। इटली अनातोलिया के भूखंड पर नजर लगाए था। ग्रीस की आंखें ईजियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों पर लगी थी और आर्मेनियन जाति के नेता नए गणतंत्र की मांग कर रहे थे। टर्की परास्त था तथा इस पर कोई भी निर्णय लादा जा सकता था। अंततः टर्की के साथ जो शांति के निर्णय लादे गए उन्हें सेब्र की संधि के नाम से पुकारा जाता है। इसके अनुसार टर्की को अरब प्रदेश, सीरिया, मेसोपोटामिया एवं पैलेस्टाइन से हाथ धोना पड़ा। पूर्वी थ्रेस, स्मिरना एवं अनेक ईजियन द्वीप ग्रीस को प्राप्त हुए तथा ग्रीक सरहद कुस्तुनतुनिया से 20 मील पर आ गई। स्मिरना का अंतिम निर्णय 5 वर्ष बाद जन्मद्वार होना निश्चित हुआ। इटली को डोडेकानीज द्वीप समूह प्राप्त हुआ। टर्की ने एक स्वतंत्र आर्मेनिया एवं कुतिस्तान गणराज्य की स्थापना की स्वीकृति दे दी। डार्डेनल्स को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रख दिया गया। इसके अतिरिक्त टर्की की सेना की अधिकतम संख्या 50,000 रखी गई और अनिवार्य सैनिक सेवा निषिद्ध कर दी गई। एक मित्र राष्ट्रीय नियंत्रण समिति को इन धाराओं के पालन के नियंत्रण का भार सौंपा गया तथा एक वित्तीय समिति की व्यवस्था की गई, जिसकी सदस्यता ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली को मिली। वित्तीय समिति को आर्थिक मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ तथा टैक्स, सार्वजनिक ऋण एवं बजट पर इसका नियंत्रण कायम किया गया। वैदेशिक विशेषाधिकारों को पुनर्जीवित किया गया तथा उसमें नई धाराएं जोड़ दी गई। अल्पमतों को स्वार्थ के संबंध में टर्की पर नई जिम्मेदारियां लाद दी गई। इसके साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन एवं इटली में एक त्रिदलीय संधि हुई, जिसके अनुसार युद्धकालीन गुप्त संधियों के आधार पर इटली को दक्षिण पश्चिम अनातोलिया प्रभाव क्षेत्र के रूप में प्राप्त हुआ एवं फ्रांस को सिलिसिया सौंपा गया। इसमें टर्की की सहमति नहीं ली गई। इस प्रकार टर्की को मरणशैया पर रख दिया गया। इस अपमानजनक संधि ने टर्की को विदेशियों के पंजे में दबा हुआ एक पौना राष्ट्र बना दिया। सुल्तान महमूद षष्ठ के डर एवं स्वार्थपरता के कारण ही टर्की की सरकार ने संधि पर हस्ताक्षर किया, जो वास्तव में टर्की की आत्महत्या के सदृश थी। परंतु टर्की में एक भीषण राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसके झंझावत में सेप्र की संधि तिनके की तरह उड़ गई और नवीन टर्की का जन्म हुआ। टर्की का राष्ट्रीय संग्राम एवं लोजान की संधि। युद्धोपरांत टर्की अपमान एवं निस्सहायता के दावानल में दग्ध था। उसकी सेनाएं परास्त हो चुकी थीं और सरकार ने घुटने टेक दिए थे। तुर्क जाति वास्तव में सजा भुगतने को तैयार थी, ग्रीक, आर्मेनियम एवं ईसाई जातियों बाह्य आक्रमणकारियों का स्वागत कर रही थी तथा तुर्क विवश थे, परंतु शनह शनह राष्ट्रीय भावनाओं ने टर्की में सर उठाया तथा यत्र तत्र स्थानीय समितियां स्थापित हो गई। 19 मई 1919 ईस्वी को तुर्कों के जन्मजात विरोधी ग्रीकों ने स्मरना में प्रवेश किया एवं उनकी सेनाओं ने तुर्की का कत्लेआम आरंभ कर दिया। यह तुर्कों की राष्ट्रीय विपत्ति का काल था। असंगठित तुर्क अब यत्र तत्र मित्र राष्ट्रों की सेनाओं पर आक्रमण करने लगे। ऐसे ही समय में उन्हें एक जबरदस्त नेता मिल गया जिसका नाम था मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल ने युद्ध में काफी यश कमाया तथा वह राष्ट्र के नायक के रूप में गिने जाने लगा। मई 1919 ईस्वी में उसे अनातोलिया के तुर्क विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना का प्रधान निरीक्षक नियुक्त किया गया, परंतु उसने राष्ट्रीय सेना के संगठन का कार्य आरंभ किया एवं देशभक्तों के सम्मेलन बुलाए। प्रथम सम्मेलन जुलाई 1919 ईस्वी में एर्ज़रूम में तथा द्वितीय सितंबर 1919 ईस्वी में सिवास में हुआ। धीरे धीरे तुर्क देशभक्त मुस्तफा कमाल के झंडे के नीचे आने लगे तथा 23 अप्रैल 1920 ईस्वी में अंकारा में तुर्की की महान राष्ट्रीय सभा का उद्घाटन हुआ जिसमें कई तुर्क प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस महान सभा ने तुर्की की संप्रभुता अपने हाथों में ले ली और घोषणा की कि सुल्तान मित्र राष्ट्रों का कैदी है, अतः वह तुर्की का भाग्य निर्णय नहीं कर सकता है। सुल्तान ने मुस्तफा कमाल को बर्खास्त कर दिया, परंतु कमाल ने अपना काम जारी रखा। इसी समय महान सभा ने एक 6 सूत्रीय राष्ट्रीय समझौता नेशनल पैक्ट की घोषणा की और शांति की शर्तें रखी। इसके अनुसार प्रथम, अरबों के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मान्यता एवं तुर्की और मुस्लिम आबादी वाले ओटोमन क्षेत्र की एकता एवं स्वतंत्रता। द्वितीय, बाह्य कार्स एवं अर्दहान में जनमत संग्रह। तृतीय, पश्चिमी थ्रेस में जनमत संग्रह। चतुर्थ, कुस्तुनतुनिया की सुरक्षा तथा खाड़ियों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण। पंचम, अल्पमतों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण परंतु पड़ोसी क्षेत्रों में मुस्लिम अल्पमतों को उसी सुविधा की व्यवस्था तथा छठा, तुर्की की पूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की मांग रखी। यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यक्रम था, परंतु इसे पूरा करने के लिए सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी। इस समय राष्ट्रवादियों के 5 दुश्मन थे, पूर्व में आर्मेनिया, सिलिसिया में फ्रांसीसी, अदालिया में इटालियन, स्मरना में ग्रीक एवं कुस्तुनतुनिया में ब्रिटिश सेना थी। इसके विरोध में सिर्फ बोल्शेविक रूस का सहानुभूति राष्ट्रवादी तुर्कों के साथ था, जिसके विरोध में सिर्फ बोल्शेविक रूस की सहानुभूति राष्ट्रवादी तुर्कों के साथ थी। परंतु मुस्तफा कमाल ने जीर्ण शीर्ण तुर्क सेना पुनर्संगठन किया। सर्वप्रथम उसने फ्रेंच की फौज पर सिलिसिया में आक्रमण कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे मजबूर होकर फ्रांस ने 30 मई 1920 ईस्वी को कमाल के साथ सामयिक संधि कर युद्ध बंद कर दिया। इस विजय से महान सभा एवं कमाल को एक पाश्चात्य देश द्वारा राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई तथा राष्ट्रवादियों में अदम्य उत्साह छा गया। तत्पश्चात तुर्क सेनाओं ने नवोदित आर्मेनिया पर आक्रमण कर दिया और अक्टूबर 1920 ईस्वी में कार्स पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ बोल्शेविक सेनाओं ने भी इसके अनेक हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दोनों के बीच 3 दिसंबर 1920 ईस्वी को अलेक्जेंड्रोपोल की संधि हुई, जिसके अनुसार तुर्की को आर्मेनिया का पश्चिमी हिस्सा मिला जिसमें कार्स एवं अर्दहान शामिल थे। इस प्रकार 1920 के अंत तक पूर्व में फ्रांस एवं आर्मेनिया का खतरा समाप्त हो गया। अब कमाल पश्चिमी अनातोलिया की ओर मुड़ा। उसने 13 मार्च 1921 ईस्वी को इटली की संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप इटली की फौजों ने अनातोलिया छोड़ दिया। तत्पश्चात 16 मार्च 1921 ईस्वी को सोवियत रूस ने एक संधि द्वारा अर्दहान पर तुर्क आधिपत्य मान लिया तथा कमाल ने बाटम रूस पर रूसी आधिपत्य मान लिया। रूस ने अस्त्र शस्त्र से कमाल को मदद करना आरंभ किया। इसके साथ ही 20 अक्टूबर 1921 ईस्वी को फ्रांस के साथ फ्रैंकलिन बुलोन समझौता फ्रैंकलिन बुलोन एग्रीमेंट हुआ, जिसे फ्रेंच फौजें सिसिलिया से निकल गई। इस प्रकार इधर से निश्चिंत होकर कमाल ने ग्रीक फौजों से टक्कर ली। ग्रीक फौजें विजय पर विजय हासिल करती हुई अंकारा के समीप आ पहुंची थी। 1921 में कमाल ने सकरिया नदी के युद्ध में ग्रीक फौजों को बुरी तरह पराजित किया। ग्रीक पलायन का आरंभ हुआ तथा 11 सितंबर 1922 ईस्वी को स्मरना पर कमाल का कब्जा हो गया और ग्रीक फौज टर्की से निकाल बाहर कर दी गई। अब कमाल कुस्तुंतुनिया की ओर मुड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने अपने मित्र राष्ट्रों से मदद मांगी, परंतु फ्रांस एवं इटली ने इससे इनकार कर दिया। अंत में ब्रिटेन ने अपनी फौज कुस्तुंतुनिया में भेज दी तथा कमाल से वार्तालाप आरंभ किया। 11 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुदानिया की सुलह द्वारा इस युद्ध की स्थिति का अंत हुआ। इसके अनुसार पूर्वी थ्रेस एवं आड्रियानोपुल टर्की को मिले तथा खाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण को कमाल ने स्वीकार किया। अंततः संधि के विशद विचार के हेतु 20 नवंबर 1922 ईस्वी लेजान में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें टर्की की ओर से जनरल इस्मात इनोनू एवं ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कर्जन ने भाग लिया। अनेक तर्क वितर्क के पश्चात 24 जुलाई 1923 ईस्वी को संधि की शर्तों पर दोनों दलों के हस्ताक्षर हुए एवं नवीन टर्की का अभ्युदय हुआ। लोजान की संधि की शर्तें। इस संधि की शर्तों के अनुसार सेब्र की संधि का अंत कर दिया गया। टर्की की राष्ट्रीयता, एकता एवं संप्रभुता को मान्यता दी गई। पूर्वी थ्रेस और स्मरना टर्की को प्राप्त हुए एवं आर्मेनिया और कुर्दिस्तान का अंत कर दिया गया। दोदेकानीज इटली के हाथ में एवं साइप्रस ब्रिटेन के हाथ में छोड़ दिए गए। टर्की ने अरबों की स्वतंत्रता मंजूर की तथा सीरिया की सीमा के संबंध में 1921 ईस्वी के फ्रैंकलिन बुलोन समझौतों को मान लिया गया। इराक की सीमा ब्रिटेन एवं टर्की के बीच समझौते द्वारा तय होना निश्चित हुआ एवं मोसुल को ब्रिटेन इराकी संयुक्त अधिकार में छोड़ दिया गया। इसके साथ ही सेब्र की संधि की आर्थिक एवं सैनिक धाराओं का अंत हो गया। वैदेशिक विशेषाधिकारों का भी अंत कर दिया गया। अल्पमतों के संबंध में टर्की ने पेरिस की संधि पर आधारित सामान्य शर्तों को मान लिया। खाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा गया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कमीशन की अध्यक्षता एक तुर्क नागरिक को देना निश्चित हुआ एवं इसे राष्ट्रसंघ के अधीन रखा गया। इसके अतिरिक्त कमीशन की अध्यक्षता एक तुर्क नागरिक को देना निश्चित हुआ एवं इसे राष्ट्रसंघ के अधीन रखा गया। इसके अतिरिक्त खाड़ियों के तटवर्ती क्षेत्र का निःसैनिकीकरण किया गया, परंतु टर्की को कुस्तुंतुनिया में 12,000 सेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही एक ग्रीक तुर्क समझौते के अनुसार ग्रीस एवं टर्की के बीच ग्रीक और तुर्क अल्पसंख्यकों के अनिवार्य अदल बदल का निश्चय किया गया, परंतु इसमें कुस्तुंतुनिया एवं थ्रेस का प्रदेश शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार इस कंटकाकीर्ण प्रश्न का भी हल निकाला गया। लोजान की संधि वास्तव में टर्की का दूसरा जन्म था। अब ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया और उसके कब्र पर ही नवीन टर्की का जन्म हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीयता पर आधारित एक स्वतंत्र टर्की का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रीय के पक्ष पर आबाद गति से कदम बढ़ाए। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।